सरबजीत सिंह का नाम सामने आते ही एक कहानी बरबस आंखों के सामने से गुजर जाती है। मगर क्या आप जानते हैं कि इस कहानी को दुनिया के सामने लाने वाला कौन था? आज हम आपकी मुलाकात दिलीप तिवारी से करवा रहे हैं। दिलीप जी न्यूज नेटवर्क में वरिष्ठ संपादक हैं और उन्होंने ही 10 साल पहले अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सरबजीत सिंह की कहानी दुनिया को बताई थी। दिलीप तिवारी साहब, SBS रेडियो हिंदी पर आपका स्वागत है।
यथार्थ बहुत बहुत धन्यवाद, और SBS रेडियो के दर्शकों के लिए भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा क्योंकि आप उन तक ये कहानी पहुंचा रहे हैं। यथार्थ मैं ये बता दूं कि एक पत्रकार के तौर पर मैं विदेश मंत्रालय कवर करता था, और जब पाकिस्तान जाने का मुझे मौका मिला तो मेरे जहन में ये बात थी कि काश सरबजीत से एक बार कहीं मुलाकात हो जाए, जेल जाने का उसको देखने का मौका मिले, क्योंकि बहुत चर्चा थी कि एक पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में लाहौर में एक भारतीय कैदी बंद है जिसका नाम सरबजीत है, और गलत पहचान की वजह से उसे फांसी की सजा हुई है। जिस वक्त हम विदेश मंत्री, तत्कालीन विदेश मंत्री के साथ हम विदेश के दौरे पर थे, यानी पाकिस्तान के दौरे पर थे, तब उस दौरे को कवर करने के बावजूद भी मेरे दिमाग में अक्सर ये बात घूमती रहती थी कैसे सरबजीत की स्टोरी को पिक किया जाए। जब हम लाहौर पहुंचे अपनी इस यात्रा के दूसरे पड़ाव में, तब हमारी मुलाकात हुई राणा अब्दुल हमीद से, जो सरबजीत के लिए कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई फिर से खुल जाए, यानी रीओपन हो जाए ये केस, और उसकी फांसी की सजा माफ हो जाए। मैं आपको बताऊं कि राणा अब्दुल हमीद से जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे हैरानी हुई कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान के लोगों के लिए और हिंदुस्तान के मासूम लोगों के लिए इतना प्यार रखते हैं वो लोग, और उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी सरबजीत की पैरवी करनी शुरू की। और कनाडा की एक अगर आप कहें कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने उनसे संपर्क किया था, हालांकि उनके ऊपर खतरा यह था कि कहीं तालिबान या आतंकी उन पर हमला ना करें। तो यथार्थ उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि सरबजीत एक गलत पहचान के बाद जेल में बंद है, उसको फांसी की सजा हुई है, लेकिन मैं उस आई विटनेस से मिला जो मलिक थिएटर लाहौर में है, जिसके पिताजी की डेथ बम ब्लास्ट में हुई थी। जब मैंने उससे पूछा कि आपके पिता की उसमें मौत हुई इस हमले में, क्या आपने सरबजीत को वहां देखा था, उसका कहना था कि मैंने सरबजीत को नहीं देखा था और मेरे पिता की मौत हुई जब मैं बहुत छोटा था, तकरीबन 12-13 साल की उम्र रही होगी, लेकिन उसके पिता लाहौर के मलिक थिएटर के सामने कीमा रोटी का एक छोटा सा स्टॉल लगाते थे। उसने कहा कि सरबजीत को मैंने सिर्फ एजेंसी के कहने पर कंफर्म किया कि ये शख्स वहां पर मौजूद था, और मैं चाहता हूं कि उसको माफ कर दिया जाए। मेरे पिता का इंतकाल हो गया है, उनकी मौत हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए सरबजीत को रिहा कर दिया जाए। मैं आपको एक चीज और खुलासा करना चाहता हूं जितार्थ, कि जब हम वहां पर आसपास के इलाकों में घूमे तो ना तो लोग सरबजीत को जानते थे, ना उन्होंने ब्लास्ट की साइड पर कभी सरबजीत को देखा था। तो उन लोगों का कहना भी ये था कि सरबजीत को माफ किया जाना चाहिए। जाहिर है यहीं से एक कहानी शुरू होती है, और जब हमने हिंदुस्तान में आके तमाम उन आई विटनेस को जिनके हादसे में, बम हादसे में जिनकी लोगों की डेथ हुई थी, परिवार वालों की डेथ हुई थी, और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर उनके परिवार के लोग उस शख्स को माफ करना चाहते हैं तो पाकिस्तान का कानून इस बात की इजाजत देता है। जब हमने ये स्टोरी हिंदुस्तान में जी न्यूज में चलाई उस वक्त, तब इसको लेकर हलचल शुरू हुई, और फिर राणा अब्दुल हमीद ने वही आई विटनेसेस के जो उनके बयान थे उसकी एक सीडी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में लगाई, और फिर ये केस रीओपन हुआ। तब सरबजीत की रिहाई की मांग ने जोर पकड़ा और हिंदुस्तान की सरकार ने भी तब इसमें इंटरवीन किया। मुझे खुशी इस बात की है कि एक मुहिम थी, हालांकि हम ये कह सकते हैं कि सरबजीत भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की जो पड़वाहट थी उसकी भेंट चढ़ गया, और उसकी जिस तरह से हत्या की गई पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मीडिया की एक जिम्मेदारी होती है वो तमाम चुनौतियों के बीच में भी। हमको कई बार लगता था कि कहीं हम इस स्टोरी के लिए जा रहे हैं, कहीं हमारे ऊपर कोई खतरा ना हो, लेकिन हम पूरी सतर्कता के साथ हमेशा यही कोशिश करते रहे कि भारत की जनता को पता चलना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान के लोग सोचते क्या है, और जिन मामलों में सरबजीत को फांसी की सजा हुई है वो असल में है कौन से मामले और क्यों वो निर्दोष है।
दिलीप जी, एक बात जानना चाहूंगा, अब आपने इस मामले का पटक्षेप भी हो गया, अनफॉर्चुनेटली सरबजीत अब साथ में नहीं है, इस स्टोरी को अब आप कैसे देखते हैं, और इस पर फिल्म भी बन गई है, इस फिल्म को आप कैसे देखते हैं, क्या इस फिल्म में या इस स्टोरी की सच्चाई लोग सचमुच समझ पाए हैं क्या?
देखिए यथार्थ मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जिनकी बॉर्डर्स एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और कई ऐसे मुल्क हैं जो बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में रहते हैं, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है साउथ एशिया में या एशिया में अगर आप कहें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह के रिश्ते हैं और उसकी बलि चढ़ते हैं वो मासूम लोग जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं या फिर वो ड्रग्स के लिए या ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में बॉर्डर के पार चले जाते हैं तो वो भी इसी तरह की प्रताड़ना का इसी तरह की मुश्किलात का सामना करते हैं और बहुत से पाकिस्तान के कैदी भी हिंदुस्तान की जेलों में बंद हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस फिल्म को अगर आप कहें कि इस बात का क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उन्होंने गंभीर सवाल को उठाया है सरबजीत के बहाने कि क्यों एक शख्स की जान इस कदर ले ली गई, इस तरीके से ले ली गई और क्या हम रिश्ते बेहतर करने के लिए सरबजीत का इस्तेमाल कर सकते थे दोनों मुल्कों के बीच में, क्या वो एक नए रिश्तों की शुरुआत होती हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में। तो मुझे लगता है कि एक फिल्मकार ने जो कोशिश की है उसको हम पूरे नंबर देना चाहेंगे, 100% मार्क्स देना चाहेंगे
जी,
कि इस तरह की स्टोरीज को सामने लाकर आप एक मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी दे सकते हैं कि आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा।
आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में आपसे पूछूंगा कि आपने भी इस फिल्म में एक्टिंग की है, एक्टर बन के जर्नलिस्ट से एक्टर बन के कैसा लग रहा है?
जितार्थ मुझे अच्छा लगा कि रियल लाइफ में मैंने जो किरदार निभाया है और अब तक निभा रहा हूँ और एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ब्रांड के साथ हूँ, मैं जी मीडिया के साथ हूँ और मुझे ये मौका जब दिया गया आप उसी किरदार में जाते हैं तो अच्छा लगता है कि आपने जो किया है उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है।
दिलीप जी हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।